या प्राइवेट सेक्रेटरी, दोनों के ऊपर कोई राज्य निर्भर करता, विशेष करके सनातन गोस्वामी जी के ऊपर। राजा उनको इतना मानता था कि सब कुछ उन पर छोड़ेगा, सनातन गोस्वामी छोड़ना चाहते हैं। रूप गोस्वामी ने एक पत्र लिखा था, उसने चार पांच अक्षर के लिखे, अधिक नहीं, और वो पत्र एक श्लोक के वो एक एक अक्षर, जैसे हम कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधो
दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। अब एक एक वर्ड का एक एक अक्षर ले लीजिए, आदि अक्षर। वैसे यंग र और कुछ कुछ चार पांच अक्षर थे उसमें। सनातन गोस्वामी ने उसको देखा, वो सांकेतिक था, जो उनके अतिरिक्त दूसरा नहीं समझ सकता था। यंग माने कहां जतुपति लोग गए, और आज मौ मधुपुरी कहां है, 5000 वर्ष पहले की बात याद दिला रहे हैं। कौगता मधुपुरी, मधुपुरी जो भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ नगरी थी, कृष्ण वहां प्रशासन करते थे, बड़े बड़े राजभवन थे, आज वो वैभव कहां मधुपुरी, और वो जतुपति लोग जो पृथ्वी पर शासन करते थे वो कहां गए। क उत्तर कोसला, अब कु लिखा है, उ माने उत्तर कोसला कौगता कहां गई है? आज रामचंद्र जी का वो भग्नावशेष राजभवन भी वहां पर नहीं है, उसका नाम फैजाबाद रख दिया, और मथुरा का नाम क्या रह गया, मोमिनाबाद। मथुरा का नाम मोमिनाबाद, वृंदावन का नाम फकीराबाद, ये सब रख दिया। तो उस समय अयोध्या को भ्रष्ट करके उसका नाम रख दिया है फैजाबाद। मोमिनाबाद बदल गया, यहाँ पर हिंदुओं का महाप्रभु आए, ये सब बदल फदल करके कहा फेंक दिया। और फैजाबाद होने पर भी अयोध्या भी उसमें अब आने लगा, पहले अयोध्या का नाम निशाना वो मुसलमानी काल में उस नाम का गंध भी मिटा दिया था। अब जहाँ पर शासन रहते जिलाधीश इत्यादि उसको कर दिया है फैजाबाद, और जहाँ पर की अयोध्या रामचंद्र जी का जन्म है उसको अब अयोध्या भी कहने लग गए, किंतु दोनों पहले एक था। तो कहाँ गया वो उत्तर कोसला, उत्तर कोसला माने अयोध्या कहाँ गई, कहाँ वहां का नरेश गए, या समझो जो कुछ भी नहीं रहेगा जड़ स्थूल, जल्दी से भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर जाओ। उनको सांकेतिक भाषा में दिया ये राज्य ताज्य, ये जो मंत्रीपन और ये अर्थ रोजगार, जब वही राजा ही नहीं रहे, उनका धन वैभव नहीं रहा, तुम्हारा रहेगा, जल्दी से छोड़ कर क्या हो। उसको उन्होंने देखा, कोई समझ नहीं सका, इन्होंने समझा और बस बड़े गंभीर चिंतित हो गए। इसके बाद में वो दरबार में नहीं गए, घर में नवद्वीप से बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और वहां पर भागवत की चर्चा होने लगी, विशेष करके दशम स्कंद की ऊपर में जो उन्होंने टीका लिखी है, ये सबका अनुशीलन चलने लगा। पीछे से उसको उन्होंने व्यक्त किया, हमारी परंपरा में गोस्वामी लोगों ने जो कौन कौन सी कैसी कैसी टीका है, महाप्रभु इसको किस रूप में लेते हैं, यही भागवत का अनुशीलन, भक्ति का अनुशीलन कर। वहीं पर एक राधा कुंड और एक श्याम कुंड दोनों तालाब बनाए, और उसमें एक कमाल का पेड़ और एक कदम्ब का पेड़ लगा दिया, एक कृष्ण कुंड एक राधा कुंड। राधा जी का प्रतीक है वो कदम्ब, गोरा फूल भी वैसा ही, और श्याम तमाल श्याम का प्रतिपादन, बस भाव भक्ति में डूबे रहते। बासा ने कहा, हुसैन साहब बासा देखो तो वो क्या कर रहा है, घर में आता नहीं है, कहता कि मेरी तबीयत खराब हो गई, क्या एक भेजा वो क्या कहते हैं उनको, मुसलमानों को वैद्य को क्या कहते हैं, हाकिम को भेजा, जाओ देखो तो। बहुत एक्सपर्ट वो था, वो गया, देखा जेते यहाँ पर तो भाई 10-20 बड़े बड़े धुरंधर पंडित लोग बैठे हैं और ये भी बैठे हुए भागवत का रस आस्वादन कर रहे हैं। और लौटाया, तबियत कुछ खराब नहीं है, वो तो सब बड़े बड़े विद्वानों को लेकर के एक पोथी भागवत की न जाने क्या है उसको लेकर के बाजता रहता है, उसमें वो डूबा हुआ है। बादशाह ने खबर दिया, जाओ कहो जैसे वो आ जाए जल्दी से, हमारा बड़ा भैया है, मैं छोटा भैया, मैं तो केवल शिकार खेलता हूँ और आक्रमण करता हूँ, इधर उधर राज्य बढ़ाता हूँ और इसकी व्यवस्था वही सारा करता है, तो उसको बुला लाओ। उन्होंने कहा मैं बहुत अस्वस्थ, मैं चल नहीं सकता। बादशाह स्वयं आ गया, अरे बड़े भैया जी, आपके ऊपर में मैंने सब कुछ ये निर्भर रखा है और आप घर में बैठ करके न जाने क्या पोथी पढ़ रहे हैं और इधर हमारा राज्य चौपट हुआ, अभी मैं जा रहा हूँ उड़ीसा पर जगन्नाथ जी पर आक्रमण करने के लिए, तुम हमारे साथ चलो। मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? आप जाएंगे वहां पर जगन्नाथ जी के सेवकों को कष्ट देने के लिए, लाखों लोगों को मारेंगे पीटेंगे ये करेंगे, मैं उसमें नहीं जाता। नहीं जाएगा? अच्छा, राज्य काज देखोगे यहाँ रह करके? नहीं, ये मुझसे नहीं। राजा मोरे प्रीति करे ये मोर बंधन, आ रहा है समझ में? ये बंगला भाषा, राजा मोरे प्रीति करे ये मोर बंधन, माने राजा मुझे जो प्रीति करता है ये मेरा बंधन। पिता मोरे प्रीति करे ये मोर बंधन, माने पिता मुझे जो स्नेह करते हैं ये मेरा बंधन। स्त्री मोरे स्नेह करे प्रीति करे ये मोर बंधन, पति मोरे प्रीति करे ये मोर बंधन, माता मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन। ये विषयों के प्रति जहां जहां है वो हमारे लिए बंधन है, अब मैं उसमें नहीं पड़ता। अब तो हमारी प्रीति की डोर कृष्ण के चरणों में हमने बांधी, आपकी जो इच्छा सो करे, किंतु अब मैं मुझसे राजकाज नहीं होगा, आप नए मंत्री रख लीजिए। और उस समय में कुछ ऐसे भी लोग थे जो प्रधानमंत्री होना चाहते थे, जैसे अभी होता है ना, अभी एक आदमी का एक टांग खींच रहा है, एक आदमी उसकी टांग खींच रहा है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई बने 2 दिन में वो गिर गए, कोई 3 दिन के लिए बना, कोई 1 महीने के लिए, कोई कुछ, जैसा देख रहे हैं भारतीय राजनीति, ये ऐसा में चलेगा ही। तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते, उन्होंने बादशाह को भड़काया, वो ऐसा नहीं रहेगा, हम नहीं चला सकेंगे, हम लोग राज्य चला लेंगे, उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। राजा ने बहुत समझाया बादशाह ने, किंतु माने नहीं। बहुत जिस पर सांवलिया रंग चढ़ जाता है ना, काली कमलिया पर चढ़े न दूजा रंग, चाहे लाख कोशिश करो काली कमली पर दूसरा रंग नहीं चढ़ने वाला। जिसको श्याम रंग जिसके हृदय में चला गया, अब उसके ऊपर में दूसरा रंग कभी भी प्रभाव नहीं कर सकता, थोड़ा सा आना चाहिए। कोई विश्व की कोई भी ऐसा कोई भी कॉलर कोई भी आसक्ति कोई भी स्नेह कोई भी कुछ नहीं है उसके ऊपर में काम करेगा, किंतु चढ़ना चाहिए। कोई शुद्ध भक्त हो जो चढ़ा दे रहा। महाप्रभु जी ने खुद ही सनातन अरूप के ऊपर में काली काला रंग चढ़ा दिया, महाप्रभु उसके पहले उनसे मिल चुके हैं, इसलिए अब दूसरा रंग नहीं चढ़ना। राजा आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे? पहले पहले तो प्रेम से कहा, जब नहीं हुआ तो शाम दाम दंड, तो शाम दाम और वेद इत्यादि सब फेल हो गया, अब केवल एक रहा दंड। उसने कहा जैसे आप नहीं चलेंगे हमको जेल में आपको बंद कर देंगे, और इसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा जैसे हाँ कैसे लोगों से पलला पड़ा है। मैं सीधी तरीके से बात पहले करता था, आप नहीं मानेंगे तो बिना टेढ़ी उंगली के घी नहीं निकलता है, जो ठीक तो आप टेढ़ी कीजिए सीधी कीजिए, वो हम तो अब राज्य काज हमसे नहीं हुआ, आप दूसरी जगह कर। कितने आदमी ये मंत्री बनने के लिए तैयार हैं, अब मुझे नहीं हो, अब तो मैं दरवेश होऊंगा बस। अच्छा ठीक, जेल खाने में बंद कर दिया और स्पेशल रूप में गार्ड उनके ऊपर में लगा दिया जो कहीं भाग न जाए, तब तक मैं वहां से लौट कर आऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा, फिर उसको हम मना लेंगे, अभी कल ही उसको आक्रमण करने के लिए जाना है। चला गया रूप गोस्वामी, वो पहले चले गए थे, जो कुछ उनको मिला था सनातन जी भी रूप गोस्वामी का सब एक जगह कुछ पैसे थे, रूप गोस्वामी ने आधा तो खर्च कर दिया, बांट दिया गरीब लोगों को, ब्राह्मणों को, ये सबको दे दिया। आधा में जो रहा उसको लेकर के अपने पैतृक भूमि में गए। उस समय बंगाल में उनके रहते थे, गंगा के किनारे। आधा जो बचा था, आधा में अपने परिवार वालों को सब दे दिया और कहा ये जीव गोस्वामी, अभी जीव छोटा है, इसका पिताजी मर गया है, इसलिए इसके पालन पोषण और शिक्षा में इसको खर्च किया जाए और परिवार जैसे खुद ठीक से रह सके इसके लिए व्यवस्था के लिए दे दिया। और जो आधा रहा उसको भी उन्होंने खर्च कर दिया और एक पैसा भी साथ में नहीं दिया। ऐसे ही अकिंचन निष्किंचन बन गए, बस कृष्ण ही की भक्ति ही उनका अपना संपत्ति है और कुछ नहीं। वहां से चले आए वृंदावन में आए। उस समय अनुपम जी इनके साथ में, पीछे से उन्होंने देह त्याग कर दिया। महाप्रभु जी उनसे पहले मिले प्रयाग में। इधर सनातन गोस्वामी जी उनका वो खत पा करके, चिट्ठी पा करके, और जब जेल खाने में बंद हो गए तो उन्होंने ये भी संकेत दिया कि हम कुछ पैसा एक मोदी के यहाँ रखा है, मोदी माने बनिया के पास में रखा है, जब जरूरत होगी वो अपने काम में लाए, किंतु जब हमको जरूरत होगी तो हम उनसे ले लेंगे। तो वो एक तरह से बैंक समझिए लोगों का। आज तक कोई मोदी को दे दीजिए, देखिए ये मोदी अधिकांश रूप में हड़प जाएगा, कुछ ही किस रूप में कुछ मिल सकता है, जान भी मरवा देगा। ऐसे वृंदावन में ऐसी घटना ही हुई, देना ना पड़े इसलिए उसको मरवा दो। तो वो मोदी को उन्होंने खबर दी, 10,000 सोने की असरफियां मंगवाई, उनका ये बाकी था उनका से लेना। उन्होंने से 5,000 असरफियां पहले उस जेल खाने के जो जेलर था उसके सामने में रख दिए। वो जेलर इन्हीं का नियुक्त किया हुआ नौकर था। कहे ये क्यों दे रहे हैं, तुम हमें छोड़ दो, मैं चला जाऊं मक्का मदीना जाऊंगा, यहाँ भारत में नहीं रहूंगा। वो भी मुसलमान था। मैं कहा जैसे ये तो बड़ी भारी मुश्किल है, एक तो आपने ही मेरी नौकरी लगाई इसलिए मैं नमक हराम नहीं बनना चाहता, किंतु राजा भी विश्वास करके हमारे ऊपर में है, इसलिए जानते समय में हमको स्पेशल रूप में हमारे ऊपर में दायित्व दे गया। यदि ये छूट करके कहीं गया तो तुम्हें हम देख लेंगे, परिवार वालों को तुम्हारी हत्या कर देंगे, अब क्या करें। देखा जैसे वो विचार कर रहा है तो उन्होंने 5,000 और असरफी लेकर के और जो कुछ था उसको दे दी। अब तो जीभ से पानी गिरने लगा, यदि मर भी जाऊं तो क्या बात है, ये हमारे परिवार वालों को देंगे, ये अच्छी तरह से अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, इसलिए उसने ले लिया और इनको ऐलान कर दिया कि मैं इनको लेकर के जा रहा था, इसको टट्टी लगी थी गंगा के किनारे वो जेल खाना, अभी मैं वहीं पर पहले सर्विस करता था उसी जगह राजमहल, उसी को कहते हैं रामकेली ग्राम, गंगा के एकदम किनारे। तो वो उसने ऐलान कर दिया जैसे मैं लेकर के जा रहा था, खुद मैं था, हमारे में सिपाही उसके साथ में पकड़े हुए थे और झटका देकर के वो गंगा मोही से कूद गया, वहां से किनारे से ऊपर कम से कम तो 30-40 फुट नीचा है वो पानी, बस वहीं से धक गिर गया और न जाने कहां डूब करके चला गया। फिर हम लोगों ने बहुत खोज की, नहीं गया, और उनको एक नौका में चढ़ा करके इस पार से उस पार कर दिया। उस बार में पहाड़ी जंगल, घना घोर जंगल मीलों में फैला हुआ। इनके साथ में इनका एक नौकर था ईशान नाम का, वो भी चला, ये प्रभु आपके साथ में चलूंगा, मैं भी वृंदावन में आप ही के तरफ में भजन करूंगा। तो उसने जब पार कर दिया तो उस पार में चला गया, वो दोनों चले गए। रात के 12 बजे घोर सुनसान, यहां पर सिंह गरज रहे हो, हाथी गरज रही है, भयानक जंगल में वो चले, रास्ता कुछ नहीं। इतने में दो व्यक्ति लाल तेल लेते हुए उसके पास में आए, चलिए चलिए रात में आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, हमारी झोपड़ी में रहिए, खाइए पीजिए, सवेरा होगा आप चले जाना, हम आपको रास्ता देंगे, हमको पहले ही पता लगा जैसे आप आ रहे हैं आप लोग, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे साथ में चलिए। सनातन गोस्वामी ने देखा जाओ कोई रास्ता नहीं, विचार तो कुछ किया किंतु भीतर ही न रख लिए, उनके साथ में गए। देखा जी जंगल में मंगल हो रहा है, सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं और उसमें सब प्रकार के सामान वहां पर व्यवस्थित है। भोजन करने के लिए उनको भोजन दिया और पूरी तरकारी बनी, मिठाई इत्यादि सब, और उसमें रहने के लिए उनको अच्छी तरह से व्यवस्था की गई, पलंग इत्यादि भी मिल गए, उसके लिए व्यवस्था की। सनातन गोस्वामी जी ने कहा यदि कोई माता से भी अधिक स्नेह करता है तो उसको डाइन समझो, है उसमें कुछ, दाल में कुछ काला है ये समझो, कुछ गड़बड़ी है, नहीं तो मैया से अधिक कोई स्नेह नहीं कर सकता। तो ये जो है ये दोनों यहां हम लाए हैं और इनके यहां से बहुत से लोग हैं, ये क्यों मुझे इतना आदर कर रहे हैं, बिना किसी कारण का ये हो नहीं सकता, जरूर कुछ में कुछ बात है। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, ईशान को, अच्छा ये बतला तुम्हारे पास में कुछ है? मेरे पास में तो कुछ नहीं है। तो हाँ कुछ है, मेरे पास में 6 मोहरे हैं, एक को छिपाया कि 8 थी,
8
उसने 7 बतलाया जी मोहरे हैं। उस समय मोहर का कितना मूल्य होगा? बहुत अधिक। उस समय 5 रुपया सिपाही को मिलता था, अपना परिवार का खूब खर्चा बर्चा चला करके मकान बना करके जमीन भी खरीद लेता था 5 रुपये में। यहाँ पर 2 आना 1 आना चावल मिल रहा हो, मन गुड़ 1 रुपये में कितना 40 किलो ना कितना मिलता था। हम लोगों के सामने में 1 रुपये में 16 किलो चावल था, गेहूं तो शायद 1 मन मिलता था, और हमारे सामने में 8 आने में एक धोती खूब लंबी चौड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास जो आजकल हम समझते हैं कि 150-200 रुपये में मिलती है। घी उस समय में, जिस समय में अभी जब 12-14 वर्ष का था, तो अभी 1 रुपये में 1.25 किलो घी मिलता था,
1.25 रुपया में मिलेगा।
तो उस समय यदि आज से मैं 40-50 वर्ष की बात कर रहा हूं और अभी ये बात है कितने 500 वर्ष की, तो उस समय उसका क्या मूल्य होगा? बड़े बड़े धनी लोगों के यहां इतना रहता होगा, बड़े बड़े लखपति करोड़पति जिसको कहते हैं। उस समय हमने जब सुना है लखपति, उस समय कितना था, अब हम समझते हैं कि ये भी लखपति से कम नहीं, ये कितने लखपति होंगे, उधर में बैठे हैं लखपति, उधर में लखपति बैठे हैं। हम समझते कि हम लोगों का मठ का भी मूल्यांकन करें तो कम से कम सब मठों का मिला करके तभी हम समझते हैं, जैसे 20-25-30 मठ होंगे तो वो कितना करोड़ बैठ जाएगा, तो करोड़पति तो हम ही बैठे हैं और हाथ में 1 पैसा नहीं ना? तो बतलाओ उस समय में सनातन गोस्वामी उसे कहा जल्दी लाओ, ये काला यम किस लिए रखा है? जब मैंने साक्षात मैंने ले लिया और हंसते हुए जाकर के उसके जो मेट था सरदार उसके हाथ में दे दिया, वो मुस्कुरा पड़ा। आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप लोगों ने जिस समय गंगा पार किया और हमको पता लग गया हमारे पास में गणित ज्योतिषी हैं, ये दो हमारा शिकार आ रहा है, 2 चिड़िया आ रही हैं और इनके पास में काफी माल है, आपके पास में 8 थे जिसके आपके नौकर ने आपको केवल 7 ही बतलाया है, मैं इसी में प्रसन्न हूं, अब आपको मारूंगा नहीं, पाप हमें नहीं लगे, नहीं देते मैं आप दोनों को काट करके ये हम ले लेते हैं, हमारे लिए ये आम घटना है, इसलिए आप बच गए, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। अब आप क्या चाहते हैं बतलाइए, हमको ये पहाड़ी से पार अपने लिए नहीं रखा। अरे जब मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा तो तुम हमारे लिए क्यों रख रहा है? यही पैसा कल रात में हम दोनों की हत्या करा देता, और इस काल को तुमने, सर्प को, कृष्ण सर्प को तुमने अभी रखा है, तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी है, इसका मुंह नहीं त्याग कर सकते, तुम समझता है यही हमारी रक्षा करेगा और हम समझते हैं कि यही हमारा वध करेगा, भक्ति से हमें विच्युत कर देगा, इसलिए तुम इसको लेकर के घर लौट जाओ। बहुत रोया गिगया किंतु किसी प्रकार से उसको भेद करके ही दम दिया। अब उनके पास में कुछ नहीं, एक कपड़ा पहने वो भी मैली हो गई, धोती फट गई, कुछ नहीं, कन ढकने के लिए कुछ नहीं, दाढ़ी बढ़ गई, मुसलमान फकीर जैसे हो गए, मांगते खुनते इधर से कुछ मांग लेते उधर से मांग करके खाते खाते वाराणसी में पहुंचे, महाप्रभु भीतर में बैठे हुए हैं, महाप्रभु जी जरा चिंतित दिखाई पड़े, बोले देखो तो बाहर में कोई संत बैठा है, आया है। तो वो लोग गए, तपन मिश्र ना कौन,
चंद्रशेखर
आचार्य थे, नवदीप में ये रहते थे। पीछे महाप्रभु जब आए तो उसके पहले वहां पर पहुंचे तो उनके पास में, तो उन्होंने आचार्य जी ये देखिए तो बाहर में कोई साधु संत है। वो गए देखा, लौट कर क्या, कोई साधु संत नहीं, कोई नहीं हुआ साधु संत नहीं। अरे जो कोई है उसी को बुला लो,
कोई है,
कोई भी है, कौन,
दरवेश है,
एक मुसलमान फकीर सा दिखता है, ठीक है उसे बुलाओ। जहां ही महाप्रभु जी की नजर पड़ी और इनके उनके ऊपर में नजर पड़ी, महाप्रभु अब सराहने गए, एकदम दौड़े विकल होकर के। सुदामा से कृष्ण मिलेंगे इतने विकल होकर के नहीं मिले जितना कि महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी से विकल होकर के, एकदम दौड़ पड़े खाली पैर और उनको जाकर के पकड़े। सनातन गोस्वामी वहां से दौड़े, मुझे मत प्रभु मत छुइए, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मत छुइए, मेरा सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, मैं बहुत दीनहीन हूँ, हमको मत छुइए। अरे मैं तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूँ अपने पवित्र होने के लिए, तुम्हारे लिए तुमको नहीं छूगा, आज मैं मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा तुम्हें स्पर्श करने से, तुम इतने उच्च कोटि के भक्त हो। अंत में महाप्रभु ने उनको आलिंगन पास में बद्ध करके दोनों प्रेम से रोने लगे। चंद्रशेखर आचार्य से, ये कौन है भाई, ये कौन है जिसको देख करके इतना इनको हो रहा है। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित एकदम हो गए। उन्होंने कहा थोड़ा देर बैठा है, अभी भद्रवेश करके गंगा के किनारे अश्वमेध घाट के पास में बैठे, अभी जाइए और वहां से होकर के आइए। उनके पास में उनके साले का दिया हुआ या बहनोई का दिया हुआ एक शाल था सनातन गोस्वामी के पास में। रास्ते में आ रहे थे तो जहां पर सबसे बड़ा इंडिया का मेला लगता है जानवरों का, सोनपुर का मेला, वह स्थान है जहां पर कि भर्तृषि जी हिरण बने थे, ये ऋषियों की तपस्या स्थली थी। यहां पर गंगा और सोन की धारा इधर निकली है गंडकी की, वहां पर वहीं पर बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। ये उधर रास्ते से आ रहे थे, उनके बहनोई ने देखा और उनको अपने यहां ले आकर के वो साल दे दिया, अगर ठंड में ही ठिठुरेगा दे दे। उस समय तो ले लिया, अभी वाराणसी तक उनके पास में, ये सब तो दरवेश के थे, गंदे मैले टैले फटे हुए, किंतु उसको रखा था। महाप्रभु ये कहने से गए, खौ कराया, दाढ़ी और ये सब चीज को हटा दिया, पवित्र होकर के गंगा में स्नान किया। उन्होंने देखा जी महाप्रभु हमारे ऐसे ऐसे देख रहे थे, ऐसे क्यों देख रहे थे। टाट पर रेशम की बखिया एक होती है, सुना है कभी नहीं, टाट फट जाए तो रेशम से उसकी बखिया माने उसको सिलाई करते हैं ने? तो ऐसे ये इसका शरीर तो खूब एकदम संत जैसा है, एकदम साधु जैसा, अकिंचन निष्किंचन, किंतु ऊपर में साल क्यों। इसलिए महाप्रभु उन्होंने देखा जी महाप्रभु ऐसे और ऐसे देख रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा एक गरीब आदमी वहीं पर था भिखारी, गंगा से स्नान करके अपने क्या कहते हैं जो बोलते हैं गुदड़ी गुदड़ी सुखा रहा था। उन्होंने कहा जैसे ये गुदड़ी हमको दे करके और ये साल लेगा, कहते जैसे और जगत में कोई तुमको मिला नहीं जैसे दिल लगी करने के लिए, मैं दिल लगी करने का पात्र हूँ, दिल लगने उन्होंने उसको फेंक दिया और उसका गुदड़ी ले ली। अब महाप्रभु के पास में जब आए, महाप्रभु जी ने देकर एकदम बड़े प्रसन्न। हाँ संतों के लिए निष्किंचन वैष्णवों के लिए इसी की शोभा होती है। अच्छा चंद्रशेखर जी इसको एक पहनने के लिए कपड़े दो। उन्होंने नया वस्त्र मंगाया, हुआ जब मैं नया वस्त्र नहीं लेता, पुरानी कोई फटी हुई आपकी धोती और कुछ छुड़ी हुई हो तो। बहुत जीत करने के बाद में उन्होंने अपनी एक धोती ले आई, उसको दो खंड में काट लिया, एक को नीचे पहन लिया और दूसरे को, जो नीचे पहना उसको कहते हैं बहिर्वास, ऊपर से जो दिया उसको उत्तरीय कहते हैं। बस ऐसे ही बांध करके बांध दिया और कोई चीज की जरूरत नहीं है, और वो साल तो दे दिया। इसके बाद में महाप्रभु जी के निकट वो बैठे, बोले जी प्रभु हमारा एक प्रश्न है, के आमी केनो मोरे जारे तापत रहे, या नहीं जानी के मने ही तह, मैं कौन हूं, ये संसार में कष्ट क्यों आते हैं, बिना बुलाए कभी नहीं जीव चाहता है, तभी ये दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, गरीबी आती है, रोग आते हैं, शोक मोह ये इत्यादि आता है, बुढ़ापा आता है, अंत में मर जाते हैं। क्यों? के मोने हित है। कैसे इसको हम पार कर सकते हैं? सनातन गोस्वामी नहीं जानते कि मैं सनातन गोस्वामी नाम का एक व्यक्ति हूं? नहीं जानते थे। कहे मैं ये सनातन नहीं हूं, सनातन तो कुछ और है। क्या है? आत्मा है, जो भगवान का नित्य दास है। महाप्रभु ने इसके उत्तर में बतलाया, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, जीव मात्र ही भगवत दास है। उसको छोड़ करके हम बिलबिला रहे हैं। कोई सर्वस्व खर्च छोड़ करके वृंदावन में आता है, अपने परिवार को रुलाता हुआ, घर संपत्ति सब छोड़ करके, और वृंदावन में रहने वाला पैसे के लिए वृंदावन को छोड़ करके बॉम्बे में, आसाम में, दिल्ली में, कली के राज्य में इधर उधर घूमता है, कौन सा ठीक है? कहां सब छोड़ करके सनातन गोस्वामी आ रहे हैं वृंदावन में, हम लोग आज छोड़ करके वृंदावन में आ, कहां वृंदावन वासी लोग बॉम्बे जा रहे हैं, कलकत्ते जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किस लिए? टका के लिए, टका प्रधान हो गया। और इनका क्या है? ब्रज प्रेम, जहां पर गोपियों की चरण की धूली है उसमें मैं स्नान हो जाऊं, अब से हमारा जीवन धन्य हो जाए। ब्रजवासियों की झूठी रोटी खाएंगे, उनके फेंके हुए कपड़े हम धारण कर लेंगे, वहां पर जो लोग मर जाते हैं मुर्दा घाटी में, उनको जलाया जाते हैं, कपड़े पड़े रहते हैं उसको लेकर के हम पहन लेंगे भले ही। वृंदावन में उनकी सारी तारी सारे तारे गालियां सुनूंगा, उनकी झूठी रोटी खाऊंगा, किंतु वृंदावन का प्रत्याग कोई नहीं कर सकता। अपनी बेटी को भी बेच करके बाजार में भी खड़ी करने पर तभी मैं वृंदावन में जाऊंगा, ये प्रबोधानंद सरस्वती का। यदि मेरी बेटी होती वो तो आकुमार ब्रह्मचारी, किंतु निष्ठा ऐसी दिखला रहे हैं। यदि मेरी बेटी होती हम उसको जाने के लिए वृंदावन में खर्च की जरूरत होती तो मैं क्या करता? बीच बाजार में उसको बेच देता और बेच करके वृंदावन में जाता। हमें वृंदावन में टुकड़े भीख मांग करके और वृंदावन में रह करके गोपियों की चरण की धूली को मैं उससे अभिषिक्त होता। आशाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किम गुल लताओ सधीना जह दुस्त जन स्वजन आर्ज पथंच हित्वा भेजे मुकुंद पर पदवीं सुतकी। सुतियां जिसकी पदवी को खोजने के लिए वृंदावन में सब कुछ छोड़ करके आ रही है, एक गोपियों की दासी की दासी की दासी की अनुदासी की दासी की दासी बन करके आना चाहिए। मत जन्म न फलमिदम मधु कैट भार मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह तदभृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृतस्य भृति इति मं स्मर लोकना। कैसा सुंदर भाव, मैं बन जाऊं तो वृंदावन की धूली में मिल जाऊं। राधा जी कह रही हमारे प्राण जो है वो सूर्य की किरणों में नंद बाबा के घर के ऊपर में छा गया, पानी का जो अंश है वो पांव सरोवर में मिल जाए जहां पर कि कृष्ण स्नान करते हैं, तो कैसी स्वभाव है। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव मात्र ही कृष्ण का दास या दास, अतिक पर्व में कहो तो दासी ही, वो भी कृष्ण की दासी नहीं, किसकी दासी ये आगे कहेंगे, अभी पहले नहीं बतलाएंगे, ओरागानुगा भक्ति में लेकर के बतलाएं, अभी ये कहेंगे साधारण रूप में कृष्ण का दास। किंतु कृष्ण के अंदर में कृष्ण का आत्मा, कृष्ण की आत्मा का आत्मा, उनके प्राणों का प्राण कौन है? श्रीमती जी हैं। इसलिए कह रहे हैं जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग संसार की कोई भी चीज नहीं है, पार्थिव जो पांच तत्वों से बना हुआ यह जो शरीर है ये हम नहीं है, हम क्या है? तथा शक्ति से प्रकाशित हम लोग जीव हैं, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, उनकी आराधना ही हमारा सर्वस्व है। मैं कृष्ण भूली से जीव अनादे पाई हूं, कृष्ण उनको उस सेवा को भूल करके इस जगत में आया है, अभी इसी को सर्वस्व मान रहा है, और इस शरीर की सेवा करने के लिए क्या नहीं करता है। इसलिए कहते हैं देखो एक धनी मानी वैभव संपन्न एक व्यक्ति था, उसको एक ही लड़का था, दो नहीं। पिताजी किसी कारण से बच्चा छोटी स्थिति में ही वो बाहर गया और वहीं पर वो मर गया। कुछ दिनों के बाद में पिता रहे नहीं। बेचारा वो लड़का बढ़ते बढ़ते जब बड़ा हुआ तो बहुत दरिद्र गरीब हो गया। उसके पास में कुछ खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए घर नहीं, घर भी गिर गया। थोड़ी देर के बाद में एक व्यक्ति आया उसके घर में, कहे अरे तू वही लड़का तो नहीं है उनका लड़का? हाँ मैं उन्हीं का लड़का। तो तू गरीब जैसा दिखता है, तो गरीब नहीं है? तो नहीं, तो मैं तो बहुत दरिद्र, मैं खाने के लिए मैं मर रहा हूं, कोई रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। देखो मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिताजी के पास में अथाह संपत्ति थी और तुम अभी छोटा बच्चा है, इसलिए उसको जमीन में गाड़ करके रखा, और मैं जानता हूं कि कहां रखा है, ये भी जानता हूं। वो सर्वज्ञ जो आया है वो सर्वज्ञ है, तो तुम एक बात करो, तुम धनी गरीब, तुम गरीब नहीं है, तुम बहुत धनी है, तुम्हारे पास में काफी धन संपत्ति है, तुमको पता नहीं है इसलिए तुम अपने को गरीब समझ रहा है। प्रत्येक जीव ही धनी है, किससे? कृष्ण प्रेम में धनी है, किंतु अपने को दरिद्र मानता है, क्योंकि उस चीज को देख नहीं रहा, अनुभूति नहीं है। किंतु स्वरूप हम जब कृष्ण के दास है तो हमारे अंदर में किस चीज की कमी है? कोई चीज की कमी नहीं है। अब वो बतलाता है, देखो वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ, राजे आप तो सर्वज्ञ हैं, हमारे पिताजी के आप सखा हैं, आज तो बतलाइए ये धन कैसे प्राप्त होगी? अच्छा सहज रूप में हो जाएगी, तुम दक्षिण की तरफ में अपने ये जो मकान जो गिरा हुआ है इसके दक्षिण तरफ में मत खोदना, नहीं तो वहां से भीमरोल निकलेंगे, भीमरोल मैंने ततैया होती है ना, उसी तरह का जो लाल लाल वाला होता है, बड़ा भयंकर, यदि डंक मारे ना बिच्छू से भी, यदि एक साथ में यदि 500 मारे डंक तो मर जाएंगे। ततैया भी यहाँ पर काटती है, इधर उधर नहीं, यहाँ 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 पर काटेगी आंख के अंदर में, जिससे कि वो आदमी मर जाए। उधर मत खोदना, उत्तर में जक्ष है बहुत, जैसे वो तुम्हें एकदम निगल जाएंगे। और रह गया पश्चिम, पश्चिम में अजगर सर्प है, वो तुम्हें काट देगा, काला सर्प, यदि काटेगा तो तुम मरेगा, धन तो मिलेगा, उधर में धन तो है नहीं, वो निकलेगा। हाँ पूरब की तरफ में थोड़ी सी मिट्टी हटाने पे ही तुमको सोने से भरा हुआ असर्फियों का एक घड़ा मिलेगा, काफी धन से, वो तुम्हारे पिताजी ने रख छोड़ा है। उन सर्वज्ञ को अपने साथ लिया और जाकर के पूरब दिशा में उसने खोदा, खोद करके देखा जो थोड़ी देर में एक ठंड शब्द हुआ, उसने रुकवा दिया और उसको धीरे धीरे हटा करके मिट्टी को उसमें से निकाला, पीतल के घड़े में भरा भरी हुई असर थी। अब तो वो मालोमाल हो गया। अच्छा इस उदाहरण से अब देखिए, एक ऐसा ही बहुत दुखी जीव, बहुत दुखी जीव, बहुत दरिद्र समझ रहा है, अब बहुत सब दुखों से दुखी है, उसके पिताजी नहीं है, कहां अंतर ध्यान है, पिता कौन है? कृष्ण, उनको वो भूल गया और अथाह संपत्ति उन्होंने उसके हृदय में दी है ना, किंतु उसको पता नहीं सर्वज्ञ आया, सर्वज्ञ माने गुरुदेव, ये हमारे पिताजी के माने भगवान के ये मित्र हैं, भगवान ने निर्देश किया गुरु जी के जाओ उस संपत्ति का उसको प्रकाश करो, संपत्ति उसके घर में है, माने क्या, जीव के हृदय में वो संपत्ति है, पोटेंसी के रूप में वैसी में प्रेम है, जीवात्मा के स्वरूप में है। उदाहरण स्वरूप समझिए, जैसे समुद्र में सीप होती है ना, सीप में क्या होता है, मोती होती है, यदि रोहिणी नक्षत्र का पानी उसमें गिर गया तो उसमें सब में स्वाति नक्षत्र का, तो उसमें सीप में मोती, एक एक मोती का दाम कितना होता है, बहुत, वो लोग जानते होंगे जो इसका मूल्यांकन करते हैं, या जौहरी अभी अभी सीख रहे हैं इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, हम तो मोती और कांच में कोई फर्क ही नहीं, हम लोग देखेंगे हीरा भी एक तरह का है, वो कांच जैसा दिखता है किंतु उसको जौहरी देख करके पता ये कहनूर होगा, हम समझे ये कांच का ठीकरा है। तो जो सर्वज्ञ हैं, अतत गुरु हैं, भगवान के सेवक हैं, माने मित्र हैं, वो हमारे पास में आए। किसे आए? भगवान की प्रेरणा से, जाओ देखो ये बड़ा दुखी है जी। उसने कहा जिसे देखो तुम्हारे हृदय में ही वो प्रेम है, संपत्ति विराट है, तुम नहीं समझते। खोदो, खोदो माने साधन करो। दूध में तो सर्वत्र घी है, अणु अणु में है, परमाणुओं में है, किंतु मथने से तब उसमें घी आता है। सरसों के तेल में पोटेंसी है तेल की, उसको पीसने से तेल आ जाएगा। ऐसे तेल नहीं दिखता, ऐसे हम लोगों में तेल नहीं दिखता, अर्थात भक्ति नहीं दिख पड़ती, किंतु जीव के स्वरूप में वो है, साधन करने से मिलेगी। गुरु यही काम करते हैं, जो चीज है उसको प्रकाश करते हैं। कैसे प्रकाश करते हैं? ये जो कृष्ण सेवा की वासना है उसके अंदर में होने पर भी उसको प्रकाश करने के लिए सेवा की वासना देते हैं, ये वासना ही भक्ति है। तभी उसको प्रकाश करने के लिए खुदवाया। खुदवाया माने क्या? श्रमणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। करो, श्रवण करो। प्रभु इस जन्म में तो हम संपत्ति के लिए कुछ चेष्टा करें, खाने पीने का अभाव है। अरे ये तो जन्म जन्मांतर में किया, तुम्हारे पूर्व जन्म के जो कर्म है तुम्हारे साथ में, वो तुमको खाना देगा, तुम्हारा कर्म खाना नहीं देगा। अभी जो कर्म कर रहे हो पीछे आगे के लिए कर रहा है, तुम पिछले कर्मों के वजह से तुमको उतना यथेष्ट मिलेगा जो तुम्हारा जीवन का निर्वाह, हमको विश्वास नहीं। तब सनातन शिक्षा पूरी उनको बतलाई। हो गया समय? पूरी सनातन शिक्षा कैसे, कृष्ण तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, अविधेय क्या है, पहले साधन, इसके बाद में अविधेय। अविधेय माने शिक्षा गुरु बतलाएगा। श्रवण कैसा श्रवण है, श्रवण किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, वंदना किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, पाद सेवन किसको कहते हैं, सख्य किसको कहते हैं, ये सब बतलाएंगे। दीक्षा मंत्र के द्वारा तुम्हारे अंदर में वो सेवा की वासना देंगे। धीरे धीरे इन साधनों को करते हुए देखेंगे जो हमारे हृदय में अंकुरित होता है, कृष्ण की सेवा की वासना जो भक्ति लता का मूल है, बीज है, वो विकसित हो रहा है। आपको उसमें उत्साह होने लगा। धीरे 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 भक्ति के सिम्टम आने लगे, जड़ीय चीजें दूर होने लगी और आत्मा की जो चीजें हैं, भक्ति की चीजें हैं, वो विकसित। जितने ही रूप में आपके हृदय में भक्ति जा रही है, जड़ीय भावनाएं, जड़ी वासनाएं, भोग की लालसा, सब धीरे 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 प्रशमित होती चली जाए। ये उसका अंत में जिसमें भक्ति की सिद्धि होगी, ये अपने आप सब चले जाएंगे। तब भक्ति की अनुभूति होगी। कृष्ण का नाम सुनने से ही एकदम प्रेम में गदगद हो जाए। अभी हम लोग इतना कृष्ण नाम कहते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, न कोई हृदय में रोमांच है, न पुलक है, न कुछ है, न चित्त द्रवित होता है, न कि हाय हाय कृष्ण के लिए होता है। और महाप्रभु कृष्ण कह नहीं पाते थे, जगन्नाथ कहते थे तो कैसे कहते थे, ज ज ग। हमारे गुरु जी अप्रकट होने के समय में हम लोग हरि नाम कर रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, तो हम लोग के साथ ही में करे हरे कृष्ण हरे, बस चले। वो गदगद नाम एकदम भर भर करके कृष्ण नाम करते हैं। उनका नाम नाम है, अभी हम लोगों का भी नाम है। जब चित्त द्रवित नहीं होता समझो अपराध है। अभी कुछ ने कहीं नहीं कि कुछ वासनाएं हैं, जब संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम अपने आप उसके हृदय में उदित हुआ, यही हमारे जीवन का अभिधेय और अंत में प्रयोजन है। सनातन गोस्वामी क्या लेकर के आए घर से? महाप्रभु जब घर से निकले तो क्या लेकर के आए? हम लोग भी जब घर से निकले तो कुछ नहीं लिया, सब कुछ ऐसे ही छोड़ करके। कमी है किसी चीज की? हम लोग जिसको कह देंगे वो काम ही उसका पूरा, लाखों लाखों का काम उसका पूरा हो जाएगा, तो क्या जरूरत है? एक आदमी को चिंतामणि मिल गई है तो धन रुपया पैसा लोहा लकड़ जमाने की जरूरत है उसको कुछ? जति चिंता ही मणि मिल गई। इसी तरह से ये भक्ति चिंतामणि है, आप लोग इसको संग्रह करने की चेष्टा करें। अर्थ और ये सब चीजें अपने आप लुटने लगी चरणों में। वो है ना एक कृष्ण भक्ति,
भक्ति भगवत
प्रारंभ का क्या है,
भक्ति
स्तई स्थिर तरा भगवत यदि दैवेन फलति दैवेन मुक्ति स्वयं मुखलितांजलि सेवते स्मान धर्म आप काम गतया समय प्रतीक्षा। अरे जिसके हृदय में भक्ति का एक भाव भी आ जाएगा, एक गंध भी आ जाएगा, भक्ति मुक्ति सिद्धि इत्यादि सब उसके चरणों के नीचे मुक्ति तक, ये कहा जाए नहीं जरूरत नहीं है,
जरूरत
ऐसी ये बात। आप लोग इस भक्ति के लिए चेष्टा करें। आज यही कहा मैं अपना वक्तव्य यही तक समाप्त तो करता हूँ। भक्ति से बढ़ करके जीवों के लिए और कुछ नहीं। इनको वैधि भक्ति की शिक्षा दी है और उनको रागानुगा भक्ति की शिक्षा दी है। उनकी शिक्षा रुचि से आरंभ है और ब्रज की भक्ति तक ले गए हैं। गोपियों की भक्ति कैसी थी, और सनातन गोस्वामी वैधि भक्ति में अभी रुचि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसको श्रद्धा क्रिएट कैसे की जाए, उसके अंदर में निष्ठा कैसे आए, फिर निष्ठा के बाद में रुचि कब आए। और सनातन गोस्वामी रुचि से आरंभ करके भाव भक्ति, और भाव भक्ति में भी कौन ब्रज की भाव भक्ति, बैकुंठ वाली नहीं, बैकुंठ में बिना भाव के नहीं आएगा, किंतु उसमें मर्यादा मिला हुआ है। ब्रज की भक्ति में मर्यादा उसमें नहीं है, ये रूप गोस्वामी की शिक्षा में है। और सनातन गोस्वामी की भक्ति में वो बैकुंठीय मार्ग है, उसमें मर्यादा रहेगी भगवान के प्रति, कृष्ण हमारे आराध्य हैं। और रूप गोस्वामी की भक्ति में कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण की हूं ये नहीं आएगा, कृष्ण मेरे, मैं जैसा कहूंगा वैसे चलेंगे वो, गोपियों की ये कृष्ण है। यशोदा जी मेरे बेटा है, सखा क्या कहेंगे, मेरे सखा ये ब्रज, कृष्ण के सिर पर अपने चरणों की धूली रगड़ देंगे गोपियां, तुम्हारी अलाय बलाय हम सब ले लेते हैं। कृष्ण को सुखो इसलिए गैया की पूंछ में गोबर और मूत्र मिला करके, और कृष्ण के उतना जबकि आती है दूध पिला करके जाती है और मर जाती है, तो उस कृष्ण को झाड़ती है गोपियां, यशोदा मैया और सब गोपियां। यशोदा को तो होश नहीं, और सब गोपियां मिलकर के ब्राह्मणों के द्वारा वेद रक्षा कवच मंत्र पढ़ाती हुई और गोबर के गाय और मूत्र से कृष्ण को झाड़ती हैं। किसको झाड़ रही है, पर ब्रह्म रक्षा, और वो झड़वाते हैं। किसी ब्राह्मण आया, साधारण एक ब्राह्मण नारद जी एक वेश बना करके आए, या शंकर एक वेश बना करके ब्राह्मण का आए, जो सदा जी कहा ब्राह्मण देता है, इनके चरण की धूल लेकर के कृष्ण के अंग में, हमारे कृष्ण को कोई रोग न व्याप, ये देखो इसमें कोई ऐश्वर्य का कोई गंध नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरे सखा हैं। और गोपियां भक्तरी की क्या क्या नहीं करती उनके साथ में, थोड़ दौड़ क्या क्या करते, इसलिए गोपियों की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। इसने अंत में कंक्लूजन किया, आराध्यो भगवान ब्रजे सतनयस्तद्धाम वृंदावन रम्या काचितुपासना बजु बधु बरगेन जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर हमारे आराध्य है, द्वारकाधीश और वैकुंठाधिपति नारायण हमारे आराध्य नहीं है, मथुरापति भी हमारे आराध्य नहीं है, हमारा आराध्य कौन है, जो नंदनंदन यशोदानंदन है, ये हमारे आराध्य। इन यशोदानंदन में भी कौन से कृष्ण, कृष्ण के सखा, ये सब है, गोपी कांत, राधा कांत, रास बिहारी, ये सब हमारे आराध्य है, एक है। और जैसे कृष्ण हमारे आराध्य है, वैसे ही वृंदावन धाम हमारा आराध्य है। वृंदावन कौन सा धाम है, पहले तो इसकी 5 कोस की एक परिधि है, 116 कोस की है, 184 कोस की है, 84 कोस में सभी कुछ आ जाता है, वो सभी वृंदावन है मुख्य। इसके अंदर में द्वादश वन, द्वादश उपवन और कितने जने शाखा वन इसमें है, एक बिंदा वन के अंतर्गत ही अटल लाबन और किशोरी वन, सेवा कुछ उसमें इत्यादि, कितने सब मिधु वन इत्यादि, कितने वन है, एक दो वन नहीं, ये सब शाखा वन है, सब करोड़ करोड़ उसमें, एक एक से अद्भुत से अद्भुत, रमणीय से रमणीय उसमें वन है सब, उसमें वृंदावन प्रमुख है। उस वृंदावन में ही गिरिराज गोवर्धन है, राधा कुंड, श्याम कुंड, नंदगांव, बरसाना, सब उस वृंदावन के अंतर्गत। और ये जो वृंदावन में अभी जो यमुना के किनारे है, जहां पर काली दह है, जहां बंसी भट है, ये सब क्या है, जहां श्रृंगार भट है, सेवा कुंज है, इमली तला है, और ये सब ये कृष्ण की गोचर गोष्ठ भूमि है, जहां पर रास हुआ था, और जहां जहां गौ को लेकर के विचरण किया, ये गोकुल है, गोकुल महाबन एक है, नंद गोकुल, नंद गोकुल माने नंद गांव का गोकुल है, वृंदावन का गोकुल है, यहां पर गो गो गोपी गोवत्स गाभियां यज्ञ से निकलने वाली ये सब जहां समूह है और जो सभी मिलकर के कृष्ण की सेवा करते हैं उसका नाम है गोकुल। वो गोकुल चलता फिरता है, चलता फिरता मैंने कैसे, आज गाड़ी छाकड़ों में लेकर के गोकुल यहां से लेकर के महावन से लेकर के कहां आ गए, छट्टी करा से राधा पूछा, वहां से डीग होते हुए काम्यवन से खेलन बन शेरगढ़ जिसको आज करते हैं, शेरगढ़ से फिर धीरे 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 होते हुए छत्रबल इत्यादि पार करते हुए फिर नंदगांव में पहुंच गए। ये सभी गोकुल हैं और ये वृंदावन है, मुख्य वृंदावन है जिसमें गिरिराज गोवर्धन है। उनका इनको दोनों आंखें क्या है, राधा इस गोवर्धन को उन्होंने धारण किया, ऐसी अद्भुत मधुर लीलाएं की जिसको सुनकर के जीवों का हृदय उसमें लग जाता है। फिर अर्थ की लालसा, संसारिक भोगों की लालसा, कामना वासनाएं सदा के लिए नष्ट हो जाती है और भगवत भक्ति में वो लग जाता है। प्रेम रस की सरिता, उसके सरिता क्यों, समुद्र के लाखों तरंगे उसके हृदय को तरंगायित करती हैं और उसी में वो कभी डूबता है कभी उतर आता है। उस समय उसकी क्या दशा होती है, नयनं गलदा सुधारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकर विचितं बपुः कदा तव नाम जुगायितं निमिषेन चक्षुषाप। एक झलक कृष्ण को यदि नहीं पाता, एक निमेश का काल कृष्ण के अदर्शन में जुग जुगांतर बीतने लगता है और मिलन में एक युग उसके लिए एक क्षण में बीत जाता है। ऐसे उसके बीत गया, इसको ब्रह्मरात्रि कहते हैं, बीत गया। कैसे बीत गया, गोपियां कहती हमने कृष्ण को देखा, अरे सवेर हमने शाम को देखा था और सूर्य को अस्त होते हुए देखा और आज सूर्य अस्त अभी पूर्व दिशा में देख रही हैं, तो ये कृष्ण से आज हम लोगों का मिलना ही नहीं हुआ और ब्रह्मा की रात उसमें बीत गई और उनको अब विरह में जुगाई तंग निमिषेना गोचारण के लिए जाते हैं। एक निमेश का काल उनके लिए एक युग युग बीतता ही नहीं है, ऐसा उनकी दशा होती है। ये प्रेम हो माने भाव अवस्था आने पर, यह भाव अवस्था है। इसलिए हम लोग जीवन का वही मोल एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ हमारे साधन भजन का वो होना चाहिए जिसमें हम बढ़कर उस चीज को पाए, तब हम ब्रजवासी कहने का अधिकारी। चौबे कहते हैं जब हम लोग ब्रजवासी हैं पंडों के मुख से भगवान खाते हैं, अरे खाते नहीं, ये क्या है, भांग धतूरा घोटते हैं, कृष्ण से कोई संबंध नहीं, पैसे से ब्रज का स्वरूप ही बिगड़ गया है, रुपया प्रधान हो गया पिछले छल बल कौशल से, बाहर से लोग आते हैं उसका ऊपरी स्वरूप दे करके मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अब कभी नहीं आएंगे। साधु संत के लिए वृंदावन अपना थोड़ा सा स्वरूप दिखला देते हैं जिससे कि वो वंचित नहीं होता और उसी में वो रम जाता है। साधु संत कांटे नहीं दिखते हैं कि इन झाड़ियों में कांटे हैं, इन झाड़ियों में जो फल लगे हुए हैं, इसमें फूल लगा हुआ है गुलाब का फूल, उसके तरफ में देखते हैं इसलिए वंचित नहीं होते। और गाय बैल कांटे की तरफ में जाएंगे पत्ती खाने के लिए, कांटे लगेंगे और उसको छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए हम लोग क्रमश भक्ति के तरफ में अग्रसर, रागानुगा भक्ति के तरफ में अग्रसर। पंचा कल्पतुर्भ्यस्तुभ्यतिता एक महामंत्र हो जाए, तो कुछ है ही नहीं, कुछ रहता अजी प्रति एक प्रदीप ले आइए, ठाकुर जी हैं, एक घी का प्रदीप ले आओ और उनकी आरती करो, जल्दी लाओ। राधा कुंडम गिरिवर महोराधिका माधवासन प्राप्तो यस्य प्रतित कृतया श्री गुरुं तं वंशाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुः।
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति आगदानस्तूलं दन्तैरूपं जाचेत् श्रीमद्रूपदाम्भोजधूलिशाकुंजन्म गोस्वामी का आज पूर्वभाव तिथि है। माइक तो ठीक नहीं था,
फोन खराब
नहीं था। श्री नरोत्तम ठाकुर जी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक रूप गोस्वामी इत्यादि के बाद में स्तंभ है। उन्होंने रूप गोस्वामी के संबंध में उनसे प्रार्थना करते हुए लिखा है, टुडे इज द डिसअपीयरेंस डे ऑफ श्री रूप गोस्वामी। श्री नरोत्तम ठाकुर इज रूपानु वैष्णव after Shilarup and Raghunath is the most prominent Acharya in our parampara. उन्होंने ये लिखा, से रूपम मंजरी पद से मोर संपद। श्रीरूप गोस्वामी के चरण कमल ही हमारे संपत्ति है, रुपया पैसा संपत्ति संपत्ति नहीं है, ये दुखदायी चीज है। श्रीरूप गोस्वामी की के चरण कमलों की जो चरण धूलि है वो हमारे लिए परम संपद है। सेम और भजन पूजन, उन चरणों की सेवा करना ही, उन चरणों की पूजा करना ही हमारे लिए भजन और पूजन। यदि कोई रूप गोस्वामी के विचारों को ले और उन्हीं का विचार ले करके उनका जीवन चरित्र आलोचना करता है और उनके भावों से देख करके मुग्ध होता है, तो इससे बढ़कर के और कोई भजन और पूजन नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी के चरण कमलों को ही नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं कि यही हमारा भजन और पूजन। क्यों? चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रयाग में उनके प्रति हुई थी और महाप्रभु जी ने अपनी सारी संपत्ति जो कि गोलोक ब्रज से लेकर के आए थे सब उनके हृदय में प्रेरणा की। श्री चैतन्य महाप्रभु हम कैम फ्रॉम गोलोक वृंदावन टू गिव हिज इनरमोस्ट ट्रेजरी दैट वाज हिडन इन गोलोक वृंदावन। ही कैम टू गिव ऑल द जीवास हू आर इन दिस वर्ल्ड always suffering anarthik charin chirat karune avatrana kalo ityadi। तो वही यदि रूप गोस्वामी के चरण कमलों की पूजा होती है तो वही हमारे लिए श्रेष्ठ पूजन है, इससे बढ़कर के और कोई भजन और पूजन नहीं। रूप गोस्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़े तो यही उनका भजन है। सही मोर प्राणधन, वही हमारा प्राणधन है। सही मोर आभरण, वही हमारा श्रृंगार है। सही मोर जीवन एर जीवन, वही हमारे जीवनों का भी जीवन है। इसलिए रूप गोस्वामी के प्रति नरोत्तम ठाकुर जी की कैसी गंभीर भावना है। सही मोर जीवन एर जीवन माने उनके चरण की धूल ही हमारे जीवन का जीवन है। माने क्या? हमारा भजन पूजन इत्यादि जो कुछ है, हमारे जीवन का जो कुछ ध्येय है, प्रसाद को उनके चरणों की पूजा ही है। सेम और रस निधि, हमारे लिए वही रस की निधि, रस के समुद्र हैं। यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो जगत के आदमी नहीं जानते जो भक्ति रस क्या है। एक चत श्री रूप गोस्वामी इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एन मन कुड नॉट नो दैट भक्ति इज रस स्वरूप। एट फर्स्ट बिफोर चैतन्य महाप्रभु ऑल यूज टू नो भक्ति, बटनॉट भक्ति रस अतरूप गोस्वामी द फॉर्चुनेट पर्सन फॉर्चुनेट डिवोटीज न्यू दैट भक्ति इज ऑल्सो ए रस पट रूप गोस्वामी हैज क्लियर इन भक्त स्वामी सिंधु एंड उज्ज्वल मणि सही मोर रसनिधि वही हमारे रसनिधि है चैतन्य महाप्रभु रसनिधि हैं राधा कृष्ण रसनिधि हैं किंतु रूप गोस्वामी नहीं आते तो उनको कोई भी रसनिधि नहीं समझता सही मोर वेद राधा सही मोर वांछा सिद्धि इसलिए वही हमारी वांछा सिद्धि है यदि रूप गोस्वामी की कृपा हो गई तो यही हमारी वांछा सिद्धि माने हमारी सब कल्पना कामनाएं पूर्ण हो जाए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च ये जो वचनों के लिए वंदना की गई है उसमें वांछा कल्पतरु वैष्णव में रूपानुग वैष्णव ही हो सकते हैं वांछा कल्पतरु सब वैष्णव लोग नहीं हो सकते इसलिए रूप गोस्वामी उन सब में श्रेष्ठ हैं इसलिए उन्हीं के जो विचार हैं और उसमें हम यदि प्रतिष्ठित हो उनकी कृपा हो तो यही हमारी वांछा सिद्धि है क्या वांछा सिद्धि क्या ये बतलाएंगे आगे रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी के जितने भी प्रकार के भाव थे उन सब भावों में गोपी भाव को श्रेष्ठ कहा और गोपी भाव में भी दो प्रकार के भाव एक आमात्मिका भाव और एक तत्त भावेच्छा जगत के लोग अधिकांश लोग समझते थे जो जैसे ललिता विशाखा इत्यादि के जो भाव हैं कामात्मिक भाव वही श्रेष्ठ है अभी भी सभी लोग जानते हैं किंतु उससे भी परम मधुर भाव उनके दासियों का है रूप मंजरी रति मंजरी इत्यादि का भाव बहुत बिरले लोग जानते हैं ललिता इत्यादि को जो कामात्मिका है उनका भी भाव और अपना स्पेशल भाव गोपियों की सेवा जुगल किशोर की सेवा में क्या आनंद है जो ललिता विशाखा भी इनसे परामर्श लेकर के इनका आदेश लेकर के इनका इंगित पाकर के ही राधा कृष्ण के कुंज में प्रवेश करते हैं इनमें क्या चीज है ये अभी समझ में नहीं आएगा इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसी भाव को देने आए रूप गोस्वामी ने इसी चीज को किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसी को प्रकाश किया वही हमारी वांछा सिद्धि है उसमें यदि हो जाए सही मोर वेद धर्म वेद का धर्म ही त्रिसत्य माना जाता है इस प्रकार से रूप गोस्वामी के जो विचार हैं वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है सही व्रत रूप गोस्वामी के विचारों को पालन पाना ही हमारा सबसे श्रेष्ठ तप है और वही सब हमारा व्रत है सही मोर मंत्र जप वही उन्हीं का विचार हमारा मंत्र जप है सही मोर धर्म कर्म वही हमारा धर्म और कर्म है अनुकूल हवे विधि यहाँ पर विधि माने चैतन्य महाप्रभु ही विधि है ये चैतन्य महाप्रभु यदि हमारे प्रति प्रसन्न हो तो ही रूप गोस्वामी के चरणों में हमारी सिद्धि होगी अन्यथा नहीं हो सकता बिना रूप गोस्वामी के बिना महाप्रभु के कृपा से इनके चरणों में सिद्धि नहीं होगी निरखा ये नहीं अपने दोनों आंखों से रूप गोस्वामी के चरण कमलों को मैं देख सकता इफ चैतन्य महाप्रभु विल बिस्टो हिज मर्सी टू एनीवन अनकंडीशनली देन वी कैन सी द लोटस फीट ऑफ रूप गोस्वामी एंड वी कैन नो हुआ चीज चैतन्य महाप्रभु अदरवाइज वी कैन रियलाइज से रूप माधुरी राशि प्राण कुबलेश उनका रूप भी अत्यंत मधुर है इसलिए वो अपने अंतर हृदय में रूप मंजरी है नीचे में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है और यहाँ पर क्या है रूप मंजरी और रति मंजरी यहाँ पर अत्यंत सुंदर है मधुर उनका रूप है और उससे भी मधुर रूप उनका भीतर का रूप है, उनके भाव और मधुर हैं रूप गोस्वामी का, जिसको पाने के लिए प्राण से रूप माधुर राशि, पाने के लिए प्राण कुबलाय शशि। प्राण कुबलाय शशि माने क्या, यह अर्थ बड़ा जरा टेढ़ा है। प्राण कुबलाय शशि, रूप गोस्वामी के जो चरण कमल हैं उनका जो रूप माधुरी है वह तो चंद्रमा है, और उनको पाने के लिए मेरे प्राण कुबलाय हैं। कुबलाय माने कुमुदिनी, जैसे सारा दिन में कुमुदिनी जल करके संकुचित हो जाती है और मुरझा जाती है, और पूर्ण चंद्र जबकि शाम को खिलता है तो कुमुदिनी अब धीरे धीरे सूर्य चंद्र की मधुर अमृतमयी किरणों को पा करके वो विकसित होने लगती है। जो ही चंद्र और अधिक अधिक विकसित होगा यह कुमुदिनी भी विकसित होने लगेगी। उसी प्रकार से भक्ति होने, भक्ति के पहले जो हम लोगों का चित्त अत्यंत मुरझा रहा था, अब रूप गोस्वामी के चरण कमल रूपी शशि चंद्र को देख करके हमारे प्राण अब सुशीतल होने लगे। प्राण की तुलना की गई है कुमुदिनी से, ये कुबलाय माने कुमुदिनी, यही हमारा प्राण है। जिस प्रकार से चंद्र की किरणों के लिए, अमृतमयी किरणों को पाने के लिए वो छटपट करती है जो कब चंद्र प्रकाशित है, उसी तरह से हमारे प्राण विकल हो रहे हैं रूप गोस्वामी के चरण कमल को पाने के लिए प्रफुल्लित हवे निशी दिन। यदि उनकी कृपा हो जाए और उनका दर्शन हो जाए तो हमारा यह जो प्राण है प्रफुल्लित हवे निशी दिन। निशी में 12 घंटा का की रात, इसमें वो यदि कुमुदिनी खिल गई तो फिर दिन में भी यदि सूर्य उदित होगा तभी तो कुमुदिनी का रंग फीका नहीं होगा और मुरझाएगी, एक बार हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर निशी, इसके बाद में दिन, चंद्रमा प्रस्फुटित हो जाने पर निशी दिन। इसलिए रात में चंद्र का परिपूर्ण रूप से अमृत पाएगा और इसके बाद में कभी भी मुरझाएगा नहीं वो फूल, सदा के लिए दिन रात जब तक रहेगा फूल तब तक के लिए वो प्रकाशित रहेगा। तू आप दर्शन अही, किंतु तुम्हारा जो दर्शन हो रहा है, विरह हो रहा है, अही वह सर्प है, और जैसे सर्प अपने विष से दूसरों को काटने पर आदमी मर जाता है उसी प्रकार से कहते हैं ये अही गरले, अही के गरल से, अही के माने सर्प के विष से जारल देही, जारल माने जलाया, किसको, देही माने आत्मा, आत्मा के जलने से शरीर भी जल जाता है, इस तरह से उसका सर्वनाश हो जाता है। तो तुम्हारे विरह में मैं उसी प्रकार से अत्यंत विकल हो रहा हूं, चिर दिन ताती तीजा। कहते हैं नरोत्तम ठाकुर जी एक जगह, केन व अछिल प्राण, नहीं उसके पहले जो मैं उनकी लीला के समय में नहीं रहा, उसमें मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ, जो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में इतना रंग किया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सर्व दामोदर राय, रामानंद गदाधर पंडित, सुभाष पंडित, और उसमें मेरा जन्म नहीं अधिकार है। नरोत्तम ठाकुर इज प्रेइंग दैट आई वाज नॉट बर्न एट दैट टाइम व्हेन चैतन्य महाप्रभु प्लेड विथ हिज ऑल रसिक भक्त लाइक सर्व दामोदर राय, रामानंद गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित एंड ऑल रूप सनातन रघुनाथ एंड ऑल अदर्स। सो चिरदिन तापित जीवन, हा प्रभु कर दया, इसलिए कहते हैं हे प्रभु रूप गोस्वामी आप हमारे ऊपर में दया करें। देह मोरे पद छाया नोत्तम लैल शरण, माधव जी कोई भक्त हैं वो बतला रहे हैं, उनसे ये सब महिमाएं हैं। जन कली ऋण शरीर निधार, इसको कहते हैं ब्रज बोली, बोली माने भाषा, बंगला का पुता और हिंदी का पुता, दोनों का एक साथ में जोड़ दिया तो ये ब्रज बुली हुई। हमारे गोस्वामी लोग बंगाल के रहने वाले थे और वो बोलते थे ये ब्रज की भाषा, तो उसमें बंगला के अधिकांश शब्द कुछ कुछ उनमें हिंदी का, तो वही जो भाषा वही ब्रज बुली हुई उसी को हमारे गोविंद दास ब्रजबुली। और जैसे ब्रजबुली में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने एक कीर्तन किया, आरती कीजे मदन गोपाल की, कंचन थाल कपूर की बाती झलकत कंचन थाल की आरती किए जय जय मदन गोपाल। इसमें और ब्रजबुली का इसमें बहुत से भाव हैं, वो भजम रे मनसिंह यह ब्रजबुली का कीर्तन है उन लोगों का, तो ब्रज के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। ये भी कीर्तन एक तरह से वैसा ही है,
भरत सकल संतान का जन्म नीचे
अच्छा यम कली रूप शरीर धार। यदि महाप्रभु के अतंत प्रिय पात्र रूप गोस्वामी कली में यदि आविर्भूत नहीं होते, जन्म नहीं ग्रहण करते तो क्या होता, होता क्या, जगत वंचित रह जाता, उनको ब्रज रस का पता ही नहीं होता जे क्या ब्रज रस है। एक रूप गोस्वामी हैज नॉट बर्न नॉट कम इन दिस वर्ल्ड इन कली, देन आई थिंक हिज राइटिंग दैट persons were devotees were deprived of madhur ras, anyone could not have known what is bhakti ras. jam kali roop sharir anadharat, jadi kali kal mein roop ji jagat mein aadirbhut nahi hote, tang tang mane tap braj prem mahanidhi kutharika kaun kapat udhar, to braj prem कि महानिधि, महानिधि माने महासंपत रूपी जो कोठरी थी उसको कौन उसके कबाट को हटाता, जैसे सभी लोगों को वो ब्रजरस मालूम पड़ता, जैसे कोठरी में बंद कोई चीज है खजाना पहरेदार हैं लोहे के कपाट हैं उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ही ये प्रेम ब्रज प्रेम रूपी मान भी की कोठरी असंख्य खजाना भरा पड़ा था, किंतु यदि रूप गोस्वामी नहीं आते कोई उसको समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता, प्रारंभ से ही श्रद्धा दो प्रकार की, एक शास्त्रीय शासन के विचार से जो श्रद्धा होती है मर्यादामयी, और एक होती है लोभमय। लोभमय श्रद्धा को कोई जानता ही नहीं, दोनों को एक मान लेते। लोभमय भक्ति जो श्रद्धा है वही लोभमयी निष्ठा उत्पन्न करेगी, और वही निष्ठा से लोभमयी रुचि, और उस रुचि से लोभमयी आसक्ति, और उससे ब्रज का भाव मधुर भाव, और उस मधुर भाव से ब्रज का प्रेम वैकुंठ का नहीं, उससे बहुत ऊपर का नहीं। यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो ये सब चीजें जगत को पता नहीं रहता। एक और बात थी, लोग भगवान की भगवत्ता को भगवान के ऐश्वर्य से मापते थे, आया समझ में, भगवान ने भगवत्ता विचार हो तो भगवान ऐश्वर्य नहीं, जो जिसके चार हाथ हैं, कृष्ण को दो हाथ है राम को दो हाथ है, तो भगवत्ता का विचार होता था ऐश्वर्य से भगवान की, जो सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला है ऐश्वर्य जिनके भाव हैं उनको भगवान माना जाता है, जैसे नारायण भगवान। महाप्रभु के आने के पहले यही अधिक रूप में प्रचारित, क्योंकि भागवत प्रचारित नहीं था, भागवत एक तरह से महाप्रभु जी ने ही आकर के आरंभ किया। इसके पहले था सनातन गोस्वामी की वैष्णवी टीका नहीं थी, विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी की टीका नहीं थी, इसलिए आश्चर्य में ही उसका पाठ करते थे लोग। किंतु इन्होंने आकर के कहा भगवान की सब प्रकार की भक्तियों में से ब्रज भक्ति सबसे श्रेष्ठ, और ब्रज भक्तियों में भी मधुर रस श्रेष्ठ है, और मधुर रस से भी श्रेष्ठ है पारकीय भाव युक्त मधुर भाव। ये महाप्रभु जी ने रूप को शिक्षा दी थी कि रूप ने ऐसे ही शिक्षा का जगत में प्रचार किया। पहले निम्बार्क, रामानुज और जितने भी संप्रदाय थे वो लोग द्वारका की महिषियों को ही कृष्ण से युक्त करते थे और उसी को मधुर रस कहते थे। रामचंद्र जी के प्रति सीता का जो भाव था उसी के तरह से मधुर रस कहते थे। रूप गोस्वामी ने जिस समय में स्थापन किया उज्ज्वल नीलमणि के द्वारा, जो पारकीय मधुर भाव ही मधुर है और द्वारका इत्यादि का जो भाव है वह स्वकीय, वह दास्य है, वो मधुर नहीं। तो यहां जितने वृंदावन के लोग थे रूप गोस्वामी के विरोधी हो गए और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के विरोधी हो गए। पारकीय भाव तो अत्यंत खराब है लौकिक में भी, इसलिए पारलौकिक में ये नहीं होगा। किंतु रूप गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के श्लोकों को लेकर उन्होंने स्थापित किया ये कृष्ण स्वयं ब्रह्म हैं, अपनी शक्तियों के आधार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, रसिक चूड़ामणि हैं, जितने भी ईश्वर हैं समस्त ईश्वरों के भी ये ईश्वर हैं, वो समस्त जगत के पति हैं, इसलिए उनके प्रति यह भाव आने से कोई भी खराब नहीं है, दोष युक्त नहीं है। पर क्योंकि स्वयं कृष्ण ही है, उनकी शक्ति ये है लादिनी शक्ति, इसलिए पार्थिव भाव वहां पर त्रुटि युक्त नहीं है, दोष युक्त नहीं है। किंतु इन लोगों के मस्तिष्क में इतना उबर नहीं था कि ये विचार आए, इसलिए उस समय में रूप गोस्वामी के जाने के बाद भी इस विचार का कुछ खंडन मंडन चलने लगा, इसके विरोधी अधिकांश लोग हो गए। इसलिए जीव गोस्वामी ने ऐसे शिष्य, उन्होंने तो एक शिष्य नहीं किया था एक भी नहीं, ऐसे लोग जो उनके अनुगत थे उन लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ स्वकीय परक टीकाएं लिखी और व्याख्याएं लिखी। किंतु विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी ने जीव गोस्वामी के हितगत भावों को लेकर और रूप गोस्वामी के विचारों को लेकर के उन्होंने पार्थिव की पुनः, यदि ऐसा नहीं होता तो भागवत भी एकदम प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। पार्जमाना पति भी तक पतियों के द्वारा निषेध करने पर भी गोपियां नहीं रुकी और कृष्ण के पास में आई। पति सुतान्वय भ्रातृबान भवान, यहां पर भी ऐसा ही किया, एक दो जगह नहीं है, नहीं। इसलिए जी गोस्वामी का भी विचार वही है, उन्होंने अपनी टीका में भी ऐसा ही टीका किया। और जी गोस्वामी ने कहा जैसे कि और लोग कहते हैं अपराकृत ब्रज में गोलोक वृंदावन में पारकीय भाव नहीं है, ये कहा है इस प्रकट लीला में है, वैकुंठ आदित्य नहीं ये सब लीला प्रचार, चैतन्य चेतामृत में लिखा। वैकुंठ आदि का तात्पर्य ये नहीं है कि वृंदावन, वैकुंठ आदि मैंने वैकुंठ तक के भी स्थान में द्वारका तक भी मथुरा तक भी इन लीलाओं का प्रचार नहीं है ये कहा, केवल मात्र गोलोक के अंतरतम और अंतरंग प्रकोष्ठ का नाम ब्रज है, उसी ब्रज में ये लीला है, क्योंकि चैतन्य चेतामृत में ऐसा लिखा गया ब्रजेर सहित
कृष्ण प्रकाश है।
हाँ कृष्ण प्रकाश है। गोलोक वृंदावन के जो ब्रज है वहीं से परिकरों को लेकर के इन भावों को और इन लीलाओं को लेकर के जगत में तो जो ब्रज में नहीं है वहां इस प्रकट वृंदावन में नहीं हो सकता है भाव। इसलिए कहते हैं लीला उस प्रकट अप्रकट प्रकाश में है और वहां से उस लीला को और परिकरों को लेकर के इस जगत में आए। यदि वहां पर प्रतिभाव नहीं है तो यहां पर नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर ये बतला रहे हैं उसका कपाट कौन उघाड़ता। अभी तक बंद था रूप गोस्वामी से पहले पार्थिव भाव की मान्यता नहीं थी। पार्थिव भाव की मान्यता नहीं थी रूप गोस्वामी के बाद में जब उन्होंने प्रमाण युक्ति के द्वारा दिखलाया। जी गोस्वामी ने कुछ दिखलाया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एकदम प्रतिष्ठा कर दी तब इस जगत का प्रचार हुआ। जगत में इस भाव का नीर खीर हंसन पान विधायन कौन पृथक करी पायत। यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो हंस क्या करता है अलग अलग कर देता है। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी यहां पर हंस के समान है। क्या कर रहे हैं वो ऐश्वर्य और माधुरी जहां पर मिला हुआ उसको कोई प्रकाश नहीं अलग अलग नहीं कर पाता। रूप गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं उनको अलग अलग कर रहे हैं। अलग करके हंस जैसे केवल दूध पीता है ऐसे ही मधुरस का पान कराने वाले और करने वाले ये रूप गोस्वामी हैं। कौन पृथक कर पाए को सब तजी भज वृंदावन को सब ग्रंथ विचार विरचित। कौन सबको छोड़ करके यहां पर घर नहीं और सब जो पहले लोग काशी में रहते थे हरिद्वार में रहते थे उसी को तीर्थ मानते थे। विशेष करके बंगाल के लोग करवट बदलने के लिए माने मरने के लिए काशी में आते थे और कुछ लोग जाते थे कहां प्रयाग अधिक से अधिक और हरिद्वार में मुक्ति क्षेत्र में। अभी भी बंगाली लोग उन सब स्थानों में अधिक हैं किंतु रूप गोस्वामी ने उन सबको छोड़कर और वृंदावन में आए और कितने ग्रंथों का प्रणयन किया। यहां गोविंद जी की सेवा उन्होंने प्रकाश की जब पितु वन फूल फलतन नादिधर मनोराज अरविंद सो मधुकर अरविंद पान कौन जानत विद्यमान करी बंद। क्या तो मधुकर जब पितु वन फूल फलतन आदि यदि वन में तरह तरह के बेली चमेली जुई इत्यादि जो फूल हैं जब फूलते हैं तो उनमें मकरंद होता है मधु के समान। मनोराज अरविंद उसमें कमल भी होते हैं फूल रहे हैं सब। यहां पर पीतू माने पान करना तो ये यदि सब फूल खिले हों बेली चमेली सब किंतु भ्रमर पान करने वाला ना रहे तो उसका माधुर्य किसको पता लगेगा किसी को नहीं पता लगेगा। ठीक उसी प्रकार से रूप गोस्वामी जी यदि नहीं रहते तो ये प्रजरस है इसका कोई भी मकरंद नहीं जानता जे कैसे पान किया जाता है। वही तो आकर के यहां पर मधुकर बन करके जैसे मधुकर उसको बतलाता है और पान भी करता है तो मधुकर तो यहां पर कृष्णचंद्र हैं अथवा महाप्रभु असल में किंतु होने पर भी उस चीज को बतलाने वाला यहां पर रूप गोस्वामी को भी मकरंद बनाया गया
मधुकर
वो मधुकर नहीं उसके अनुगत में ये मधुकर हैं। जैसे कृष्ण मधुकर हैं गोपियों के प्रेम रूपी मधुर रस का आस्वादन करते हैं और गोपियां कृष्ण के रूप माधुरी का स्वादन करती हैं कि नहीं तो वो मधुकरी नहीं है मधुकर है मधुकरी है। ठीक उसी प्रकार से रूप गोस्वामी भी मधुकर हैं कृष्ण के कृष्ण इतने जो सुंदर हैं, गोपियां उनके मधुर रस का कैसे आस्वादन करती हैं, यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो जगत को पता नहीं, इसलिए इनको मधुकर कहा गया। को जानत मथुरा वृंदावन को जानत ब्रज गीति, कौन मथुरा और वृंदावन को जानता? लोग मथुरा को कंसपुरी समझते, किंतु रूप गोस्वामी ने आकर के कहा अरे इस मथुरा को भी साधारण मत समझो, मथुरा महात्मा लिखा है, और मथुरा को पुष्प कमल माना, और मकरंद वाला कितन को वृंदावन को, और मकरंद के अंदर में जो भीतर और कुछ है वो है राधा कुंड श्याम को, जो उसमें सब समय डूबा हुआ है। तो मथुरा और वृंदा को कौन जानता, जैसे कि हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पहले ही बतलाते हैं, वैकुंठा दपिशो दरात्मन जिता दारावती जातिया जत्र श्री सतनिज पट मही प्रभु खेलति प्रेम क्षेत्रम अपि असौ मथुरा हरे जन्मता जत्र श्री ब्रज एव राजति तरम। ये मथुरा मंडल में ब्रज है, इसलिए मथुरा का महत्व, ये मथुरा मंडल के अंदर में है, ये वृंदावन राधा कुंड ये सब कुछ, इसलिए मथुरा माने मधुरा, मधुरा माने मधु, मधुर से यह मथुरा हुआ है। उन्होंने अपने एक श्लोक में भी बतलाया है, मथुरा में गोविंद जी न केसी घाट, मथुरा में केसी घाट वहां पर भी मथुरा शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए को जानत राधा माधवरती को जानत सोई प्रीत, कोई भी नहीं जानता ये राधा माधव की प्रीति कैसी है, रति कैसे है, उनका रस कैसा है, ये रूप गोस्वामी ने ही जनाया जगत को। जाकर चरण प्रसादे सकल जन गाई गवाई सुख पावत, जिन्हीं की चरण कमलों की कृपा से ही जगत के लोग राधा कृष्ण माधव की लीलाओं का वर्णन करते हैं और सुनाते हैं दूसरों को। चरण कमल शरणागत माधव तो महिमा उरलागत, रूप गोस्वामी के चरण में प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके चरण कमलों का शरणागत हूं। यदि कोई शरणागत होगा तो रूप गोस्वामी के कृपा को समझेगा, उनकी इन ग्रंथों के भावों को समझेगा, अन्यथा नहीं समझ सकता। तो ये माधव माने कोई कवि हैं, रूप गोस्वामी की वंदना करते हैं, हम लोग भी रूप गोस्वामी के चरण कमलों की आज वंदना करते हैं, जैसे वो कृपा करें कि उनके जो हृदय के जो भाव हैं, जो उनके ग्रंथों के सारे हैं, हम लोग भी उसको समझ करके और राधा कृष्ण की वैसी ही प्रीति कर सकें। तो
बोले सर्वजनी दुनिया बोले सर्वजनी रूपा कृपा मिले बोल चारा बोले सर्वजन सुनिया आज सिरूपति पार मिले दुगल
साधक को होना चाहिए ये कृष्ण को अच्छा लगे ना लगे किंतु उसको सुख हो उसको प्रीति हो इस भाव से जो किया जाता है वहां पर अव्याप्ति होने पर भी भक्ति है और जहां पर उसका लक्षण देखा जाता है जो कुछ तो खूब आनंद रहा कुश्ती कर रहे हैं और खूब बड़े आनंद से रोष से रसास्वादन करते हैं दीर रस का किंतु यहां पर अति व्याप्ति हो गया किंतु भक्ति इसमें जसोदा जैसे जो है जो कृष्ण को प्रीति हो न होकर के कृष्ण को मारने की उसमें चेष्टा इसलिए अनुकूल नहीं होकर के प्रतिकूल हो गया इसलिए यह प्रतिकूल भक्ति नहीं है इसलिए बतलाया आज तक जितनी भी भक्ति के लक्षण
पुराणों में वेदों में जस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा करो और भागवत में निर्गुणस्य ही भक्ति योगस्य लक्षणम उदाहृतम अहितुक्य अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तम इत्यादि जो बतलाया गया सवई पुंसांग करो धर्मो जतो भक्ति रतोक्षये अहितुक्य अव्यवहिता इत्यादि जो बतलाया ईश्वरे परानुरक्ति ये नारद सूत्र में बतलाया सांडुल्य सूत्र में भी बतलाया क्या बतलाया सा परानुरक्ति ईश्वर ये सबको मिलाकर के जब विचार करते हैं तो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु उनके परिकर लोग स्वरूप दामोदर इत्यादि विचार करके देखते हैं आज तक भक्ति का इतना उत्कृष्ट और समस्त लक्षण से युक्त और इसके जो लक्षण नहीं है उन सबको देख करके ऐसा सुंदर श्लोक नहीं बना जैसे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इसको कहते हैं पारिभाषिक श्लोक श्रीमद् भागवत में ऐसे ही पारिभाषिक श्लोक रूप गोस्वामी के जितने भी श्लोक हुए हैं सब पारिभाषिक हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम ये पारिभाषिक सब लोगों के लिए भविष्य में आने वाले जितने लोग हैं इसी परिभाषा से उसका विचार अनर्थ विचारिंग चिराद एक तरह से ये पारिभाषिक श्लोक है अभी जो श्लोक नाम के संबंध में बतलाया ये पारिभाषिक है ऐसा सुंदर नाम के लिए कोई भी व्याख्या आज तक श्लोक नहीं बना था नाम के बहुत से सब हैं एतत् निर्विद्यमानानं इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम निर्णतम हरे नामानुकीर्तनम श्रीमद् भागवत के अंत में नाम से ही उनको प्रणाम करके समाप्त किया है सब कुछ किया नाम के लेने से सप्तम स्कंद में क्या फल होता है ये भी बतलाया किंतु इतना सुंदर रमणीय और हृदय स्पर्शी और सब लक्षण उसमें आए ऐसा किसी ने इसी सबको हमारे श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी ने बहुत सुंदर उसे बतलाया और भी अच्छी तरह से अनुशीलन करेंगे एक बात और थोड़ा सा विचार करेंगे श्री चैतन्यम महा मनोभीष्टम ऐसा मत कहना चैतन्यम नहीं है वहां पर समास होकर के क्या हो गया श्री चैतन्य मनोभीष्ट और एक ऐसा कौन सा श्लोक अभी कहा उसमें ऐसा मत करना विशेष करके तुम पंडित आदमी हो रहा है इसलिए व्याकरण का भी थोड़ा सा पंडित समाज में यह सब थोड़ा सा रखना धीरे धीरे तुम लोग बढ़ो और ऐसे ही सुंदर रूप से बढ़ो जो हम लोगों के गौड़ीय सिद्धांत को जानने वाले और नहीं होने से दूसरे संप्रदाय वाले लोग कटाक्ष करते हैं इनका कोई संप्रदाय नहीं है इनका कोई सिद्ध प्रणाली नहीं है ये लाल कपड़े रखते हैं इनका महाप्रभु जी के भजन में कोई अधिकार नहीं है और न जाने क्या क्या सब कहते हैं इन सबका उत्तर देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जी गोस्वामी ने यही काम किया उनका यह सांप्रदायिक धारा नहीं थी रूप गोस्वामी ने इसको दोनों तरफ से घाट पक्के बांध करके अभी तक के लिए ऐसा कर दिया है दूसरे विचार उसमें न प्रविष्ट हो सके तुम लोग भी भविष्य के लिए निधि तुम लोग हो तो तुम लोग इस सबको खूब अच्छी तरह से दिन रात परिश्रम करके भजन करो अंतत्वों की उपलब्धि करने की चेष्टा करो अब श्रीमान राम प्रसाद ब्रह्मचारी जी कुछ रूप गोस्वामी के संबंध में उनके चरणों में उनकी महिमा का वर्णन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करें
गोपाल वन अरे गोपाल वन ब्रेन वन लाइट वन अरे सत्य जाती स्पेशल बट रूप मंजरी रति मंजरी लॉन्ग मंजरी Divine is the same. The prayer of Krishna is the same. Loyalty to Srimati Radhika is the same. Something different. Very little, but we cannot reach there. Rukmanjari has so many specialties. But all the manjaris are under her.
Sri Kundali has all the qualities that is in Radha, but less, but all qualities.
She is Madhya. You know Madhya?
In middle.
She is not prakara, not so much mrdu. No? Not dhira, not in middle. She has no so much man, but not less man. Like Srimati Radhika and Vishakha. Rati Manjari is the Raghunath Das Goswami is so much loyal to Rupa Manjari, and he has a special quality to serve Srimati Radhika. Long Manjari has a special something. You know that in a tree there are lakhs and lakhs of leaves, but any leaf of any tree is not equal in respect. Some rekha is like this, some this, some crooked, some round, something. In one umbrella tree, lakhs and lakhs kinds of leaves, and lakhs kinds of mango fruits. But in shape, in taste, all will not equal, something different. So all the gopis have same quality, loyalty to Srimati Radhika and serving Jugal Kishore, but in some other difference. And in this Prakat Leela, Chaitanya Mahaprabhu has ordered each Goswami to preach in their own line what Chaitanya Mahaprabhu told their following. So Sanatana Goswami is qualified in every respect. No? He is Manjari. But yet he told that you should develop Vaidhi Bhakti. Rupa Goswami was in the same category, but he told that you may preach Radhana Bhakti. Sanatan Bhatta Raghunath. Bhatta Raghunath. Bhatta Raghunath. Smriti in Bhagavat Katha and Archan also. Jiva Goswami to protect Sampradaya Dhara by Tattva and Siddhanta. So he made Satsang Darbha, Gopal Champu, Vyakaran, and especially Ishad Satsang Darbha. No? And Raghunath Das Goswami, the work which was done by Rupa Goswami to increase more, to preach more, in very like sadhak. Rupa Goswami has done all these things, but sadhak, very rare sadhak can know and take their his principles. But by practicing all these things in his own life, and he has done everything.